الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، ہماری گفتگو نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف اور سیاسی نظریات کے حوالے سے چل رہی تھی. گزشتہ دروس میں ہم نے امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت اور سیاست کا نقطہ نظر ان کا ہم نے ملاحظہ کیا، اور ہمارے سامنے نہج البلاغہ کے کلمات کی روشنی میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے حکومت ایک وظیفے کی انجام دہی کا ذریعہ ہے. کیونکہ حکومت کے بارے میں دو ہی ہمارے پاس نقطہ نظر آتے ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت خود ایک عالی ہدف ہے، حکومت کا حصول خود ایک اہم ترین مقصد اور انسانی کمال ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا نقطہ نظر جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کی کوئی اپنی ذاتی قیمت اور حیثیت نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں فقط اور فقط اگر حکومت مد نظر رکھی جائے تو وہ بکری کی چھینک سے بھی، جو مواد بکری کی چھینک کی صورت میں نکلتا ہے، اس سے پستر ہے، یا جو جوتا اس قابل نہ رہے کہ اسے مزید گانٹا جا سکے، اس سے بھی کمتر اور حقیر قیمت ہے حکومت کی. لیکن اگر حکومت سے مقصود وہ وظائف کی ادائیگی ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام کا نفاذ ہو، مظلوم کی مدد ہو، عدل و انصاف کا قیام ہو، تو پھر حکومت ایک عالی اور برتر چیز ہے، کہ ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے اور ظلم و ستم کو ختم کیا جاتا ہے. یہ امام علی علیہ السلام کا ہم نظریہ پیچھے دروس میں گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے عدالت کو مرکزی حیثیت دی ہے، اور عدل کے مقابلے میں کسی بھی شے کو اس کے مد مقابل یا مساوی قرار نہیں دیا. بہت ساری انسانی خصلتیں، انسانی کمالات اور متعدد اوصاف حسنہ ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام نے عدل اور عدالت کو ان میں برتر و اشرف و اکمل و افضل قرار دیا ہے. اسی اثنا میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے معاشرے میں عدل کو نافذ کیا. یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ نظریاتی گفتگو کرتے ہوئے یا انسان معلوماتی گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری اچھی باتیں کر جاتا ہے، اور انتہائی عمیق اور بہترین پرزینت پر رونق معنی اور معارف کو ذکر کرتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بہت سے انسان اس عمل میں پیچھے نظر آتے ہیں مختلف مصیبتوں اور مشاکل کی وجہ سے، اور اس راہ کو جسے پہلے خوب اور اچھا قرار دیا تھا اسے ترک کر دیتے ہیں. امام علی علیہ السلام کی سیرت کیا رہی ہے؟ لہذا عدل کی قیمت تو ہمیں پتہ لگ گئی کہ عدل وہ ذریعہ قرار پایا جس سے امام علی علیہ السلام نے ہر شے کی اصلاح کو ضروری قرار دیا. عدل کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکے، اور یہاں پہ ہم نے تفصیلی طور پہ اس کو ملاحظہ کیا. مثلا عدل کے مقابلے میں بعض نظریات آتے ہیں، مثلا اقتصاد، مالیات کے ذریعے سے ایک ملک میں سارے مسائل کو حل کیا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے مسائل حل کیے جائیں. بعض اوقات رفائی کام و عوام الناس کا پیٹ بھر کے یا ان کی خوب خدمت کر کے مسائل کو حل کیا جائے. مختلف تفکرات معاشروں میں اور مفکرین میں پائے جاتے ہیں. امام علی علیہ السلام کا تفکر وہ عدل تھا، کہ عدل کا نفاذ کر کے ہر شے کی اصلاح کی جائے، اور اصلاح میں بھی ابتدا کہاں سے کی جائے، وہ والی حضرات یعنی حاکموں اور حاکموں کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر رہنے والے عوام الناس دونوں کو بیک وقت عدل کے ترازو میں تولا جائے. لہذا غرر الحکم اور بعض جگہوں پہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان بھی وارد ہوا ہے، بالعدل تصلح الرعیہ، کہ عوام الناس کی اصلاح وہ عدل کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے بعض جگہوں پہ वारिद हुआ कि हाकिमों की इस्लाह अदल के साथ की जा सकती है, कि ये कलिमात हम साबिकन नहजुल बलागा में भी मुतालिया कर चुके हैं दुरूस में। यानी हाकिम हजरात की इस्लाह जो है वो रईयत की इस्लाह के ज़रिए भी होगी और अदल के ज़रिए भी होगी। लिहाजा अदल एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से अवामुन्नास की भी इस्लाह होती है और हाकिमों की भी इस्लाह होती है। हुक्मरानों की इस्लाह का ये तरीक़ेकार नहीं है कि हुक्मरानों को ज़्यादा से ज़्यादा फुर्सत और मोहलत दी जाए, कि वो जितनी तबाहकारियाँ करते रहें की जाती रहें और कोई उनका मुहासबा ना किया जाए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस फ़िक्र के किसी सूरत कायल नहीं थे। लिहाजा उनके अपने भाई अकील इब्न अबी तालिब क्यों ना हों, या उनके करीबी तरीन साथी जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्यों ना हों, या इसी तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हत्ता के इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक गुफ्तगू की और फरमाया कि अगर इन्होंने भी वो काम किया होता कि जो तुमने किया है, तो मैं इन पर भी वही हद जारी करता कि जो तुम्हारे ऊपर जारी होनी थी। क्योंकि इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम से ऐसा कोई काम हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने मेयार बयान करते हुए बताया कि मेरे करीबी तरीन फर्जंद ही क्यों ना हों, अगर वो भी किसी जुर्म में शरीकेकार निकले तो उनका मुहासबा किया जाएगा। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सख्ती के साथ अपने वलात और हाकिमों और हुक्मरानों का मुहासबा किया और अदल के तराजू पे रखा। किसी की चापलूसी है, किसी की मदाव सताइश है, किसी की कराबतदारी है, किसी शय का उन्होंने ख्याल नहीं किया। और वाकई ये चीज़ एक बहुत ही दुश्वार गुजार एक मरहला होता है कि इंसान तमाम कराबतदारी, रिश्तेदारी और अजीज़ अकरबा के अलावा जो एक कुव्वत शुमार हो सकते हैं माशरे के अंदर या उनके नुमाइंदे माशरे के अंदर बनते हैं, उनकी नाराज़गी को मोल के अदल व इंसाफ के परचम को पूरे के पूरी रियासत में उसका वो परचम लहराएं और मजबूती के साथ गाड़ दें। ऐसा बहुत मुश्किल एक काम है। आज हम इसी हवाले से तसलसल को बढ़ाते हुए, क्योंकि नहजुल बलागा के ज़िम्न में हमें इस चीज़ को बड़ी दिक्कत से मुतालिया करने की ज़रूरत है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से माशरे में अदल व इंसाफ की कोशिश की। क्योंकि अदल के जो फ़ज़ाइल, क्योंकि हमने फ़ज़ाइल का एक हिस्सा तो पढ़ा कि अदल की क्या कीमत है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ भी पढ़ा, और बकिया जगहों पे कलाम जैसा अलकाफ़ी में बाज़ रवायात आई हैं या गुररुल हिकम, उसमें अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो कलाम आया है, अगर हम उसका मुतालिया करें तो वहाँ जाके हमें पता लगता है कि अदल की कीमत क्या है। मसलन ये जुमलात नहजुल गुररुल हिकम में इमाम अली अलैहिस्सलाम के वारिद हुए हैं, अल अदलु हयातुन वल जौरु, बाज़ जगहों पे हलाकुन और बाज़ जगहों पे वल जौरु ममहातुन, यानी मिट जाने वाली चीज़ ज़ुल्म सितम। अदल हयात है, ज़िंदगी अदल है, या अदल के ज़रिए से हक कायम होता है, अदल के ज़रिए से अमन व अमान आता है। अदल वाहिद ऐसी शय है जिससे हर किस्म का नक्स दूर हो जाएगा, और यही चीज़ हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मरबूत रवायात में भी नज़र आती है कि वहाँ पे अदल की हुकूमत उन रवायात में हमें दिखाई देती है। यम लउल अर्द अदलम व किस्ता कम मोलत जौरम व जुल्मा, या किस्तों व अदला, कि वो जुल्म सितम को ख़त्म करके किस्तो अदल के ज़रिए से पूरी ज़मीन को भर देंगे। यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी पूरी दुनिया में जो अमन बरपा करेंगे और पूरी दुनिया में जो इस्लाह बरपा करेंगे वो अदल के ज़रिए से है, अदालत के ज़रिए से है। अदल हमारे पास ये वाहिद एक ज़रिया बनता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के, क्योंकि हम अब ज़मीनी हालात पढ़ रहे हैं और इन हालात को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जब ये अदल का निफाज शुरू किया तो उन्हें मुश्किलात क्या क्या आईं, और अदल के क़याम में किस तरीके से एक शदीद तरीन टकराव जन्म लेता है। क्योंकि अदल का क़याम किसी भी जगह पर आसान नहीं है, चाहे इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए हो या बाद में आने वाले आइमा अलैहिस्सलाम के लिए हो या उनके पैरों के लिए हो कि जो अपने इमाम की सीरत पे चलना चाहते हैं, अदल का क़याम इंतहाई सख्त एक मरहला बन जाता है। आज हम मकतूब नंबर 63 पढ़ेंगे कि जो नहजुल बलागा मुफ्ती जाफ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे के मुताबिक मकतूब उसमें भी 62-63 नंबर मकतूब बनता है। ये मकतूब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा के हाकिम व वाली अबू मूसा अशरी के नाम लिखा। इंशाल्लाह ताला जल्द एक मौजू हमारा आएगा और वो ये आएगा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लामी रियासत और उसमें शहरों की तकसीम और शहरों पे जो हाकिम या गवर्नर मुकर्रर थे उनका बयान पढ़ें, क्योंकि इसके जाने बगैर हमारे लिए नहज बलागा के मजामीन को समझना आसान नहीं रहेगा। आज हम अबू मूसा अशरी को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम इंतहाई सख्त हालात में हुकूमत के मसनद खिलाफत व हुकूमत में आए और वो ऐसे हालात थे कि पूरे मुल्क से एहतजाज करने वाले लोग फ़कत एक मरकज़ या चौक पे एहतजाज नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने दारुल खिलाफा कैपिटल के ऊपर धावा बोल दिया और जो उस वक्त की पार्लियामेंट थी जिसे दारुल अमारा कहते हैं, पार्लियामेंट में घुस के उस वक्त के हुकूमत के रईस हज़रत उस्मान बिन अफ़वान उन्हें बुरे तरीके से कत्ल कर दिया। लिहाजा ऐसे हालात में जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में हुकूमत आई तो मामलात को सुलझाना फौरन आसान काम नहीं था। बहुत सारी चीज़ें जन्म ले चुकी थीं। एक तरफ से दीन में इतनी तब्दीली आ गई कि बुखारी है और इसी तरीके से मुस्नद अहमद बिन हम्बल अहले सुन्नत की सही सनद रवायात में वारिद हुआ है। ख़ुद अबू मूसा अशरी से भी एक रवायत वारिद हुई है, इमरान बिन हसीन हैं उनसे भी ये रवायत वारिद हुई है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ाई, पीछे पढ़ने वालों ने नमाज पढ़ी, तकबीरात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रुकू सुजूद से पहले अंजाम दी। जब नमाज ख़त्म कर चुके तो पीछे जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने कहा कि आपने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ याद दिला दी है, यानी तरीक़े नमाज ही रसूलुल्लाह का जो तरीक़े नमाज था वही महफूज नहीं रहा माशरे में, इस कदर मसाइल पैदा हो गए थे माशरे में। और यही इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने एक मकतूब में बयान फरमाया है कि इस कदर मुश्किलात मेरे ऊपर आन पड़ी थी जब ये खिलाफत मुझसे ले ली गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद। जब खिलाफत ले ली गई तो एक तरफ मेरे सामने ये मंज़र था कि मुर्तद होने वाले इस्लाम से निकल रहे थे और दूसरी तरफ इस्लाम की बुनियादों को उखेड़ा जा रहा था। तो ऐसे में मैंने ये खिलाफत का पीछा छोड़ के दीन इस्लाम की मदद की और दीन इस्लाम को बातिल से निकाल के उसके पाँव को मजबूती से ज़मीन पे गाड़ दिया और हक का परचम गाड़ दिया। यानी अगर उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम खिलाफत के लिए कोशिश करते तो ये दीन इस्लाम ही बाकी ना रहता। और इसके हम असरात देखते हैं, ज़माना आगे गुजरा और उस गुजरते ज़माने के साथ मसाइल दर मसाइल पेश आते रहे। लिहाजा अब इस्लामी रियासत जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में आई, एक तरफ दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बहुत सारी बिद्दतें ईजाद हो चुकी थीं, नंबर दो बैतुल माल करप्शन और ख़यानत का शिकार हो चुका था, खाली बैतुल माल पड़ा हुआ था, नंबर तीन बड़े बड़े ग्रोह सियासी ग्रोह बन गए थे, क्योंकि एक अरसा दराज से इलाकों में जब एक हाकिम की हुकूमत रहे या एक ख़ानदान की हुकूमत रहे तो ये बात आज हम भी जानते हैं कि एक जगह पे एक ख़ानदान की तवील हुकूमत उसकी आल औलाद में उस जगह की हुकूमत का बायस बन जाती है। लिहाजा यहाँ पे हम कबल इसके कि आज अबू मूसा अशरी उनके मुतालिक अपनी गुफ्तगू को तवील तौर पे डिस्कस करें, आपके सामने खुलफाए राशिदीन के नाम से जो खुलफा उम्मत इस्लामिया में पहचाने जाते हैं, खुसूसन अहले सुन्नत उन्हें खुलफाए राशिदीन के नाम से ताबीर करते हैं, हम उनके दौरे हुकूमत को देखें कितना ज़माना हुकूमत था उनका। सबसे पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़ाहरी तौर पे खिलाफत की मसनद के ऊपर बुराजुमान हुए वो खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर हैं। हज़रत अबू बकर वो तकरीबन 2 साल 11 हिजरी से लेके 13 हिजरी तक खिलाफत में रहे और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। और उनके दौर में आलम इस्लाम बहुत वसी पैमाने पर नहीं फैला था, इसलिए 6-7 बड़े बड़े इलाके थे और उधर ही उन्होंने गवर्नर बनाए और वाली बनाए, बकिया इलाके अभी फतुहात उधर नहीं हुई थी। इसके बाद 13 हिजरी को आए हज़रत खलीफा दुवम हज़रत उमर बिन खत्ताब और उन्होंने 13 हिजरी से लेके 23 हिजरी तक हुकूमत की, यानी 10 साल हुकूमत की। 13 हिजरी से लेके 23 हिजरी तक 10 साल हुकूमत का दौरानिया चला हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का, और उनके दौर में इराक़ और ईरान फतह हो गया, क्योंकि इराक़ जो मौजूदा इराक़ है ये रूम के मातहत आता था। रूम जिसे आज के दौर में भी यूरोप से ताबीर किया जाता है, इन्हीं के कंट्रोल में था, यानी यूरोप था। बाल्फाज दीगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यूरोप का दायरेकार मौजूदा तुर्की, शाम, लबनान, फ़लस्तीन, उर्दन और मौजूदा कामिलन इराक़ तक फैला हुआ था। ये कामिलन उनके अंडर में था, ये यूरोप का हिस्सा शुमार होता था। खलीफा दुम के दौर में फतवाहत हुई, ईरान भी फतह हो गया और इराक़ का एक बड़ा हिस्सा और बड़ा इलाका वो फतह हो गया। 23 हिजरी को जब खलीफा दुम कत्ल हो गए तो फिर तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान आए, और उन्होंने 23 हिजरी से लेके 35 हिजरी तक हुकूमत की। तकरीबन 12 साल उन्होंने हुकूमत की, और इन चार खुलफा में सबसे तवील दौर खिलाफत का वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का है। लिहाजा 23 हिजरी से 35 हिजरी तक हुकूमत की, और 35 हिजरी में जब शोरिशियों और धावा बोलने वाले अफराद या एहतजाज करने वाले अफराद के हाथों खलीफे से वो कत्ल हो गए, तो फिर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वो मसनद खिलाफत के ऊपर आए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का कुल दौर वो 5 साल का है, लिहाजा 35 हिजरी से 40 हिजरी तक इमाम अली अलैहिस्सलाम वो खिलाफत में रहे, और 40 हिजरी को इमाम अली अलैहिस्सलाम को इब्ने मुलजम ने शहीद कर दिया। ये हमारे पास अदाद व शुमार थे। आए अब हम इधर, हमें मालूम हुआ कि असल फिर इसका ये मतलब हुआ कि आलम इस्लाम जो उस वक्त इस्लामी एक मुल्क या इस्लामी रियासत थी, उसमें इलाकों के ऊपर जो वाली बनाए गए वो बुनियादी तौर पे खलीफ़े दुम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में बनाए गए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में जो बड़े बड़े इलाके बने, उनमें से एक यही कूफा था, मौजूदा मिस्र था, और बकिया जज़ीरे अरब के बाज़ इलाके थे। क्योंकि कूफा और मिस्र इसलिए अहमियत के हामिल थे, एक तो ये बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर थे जहाँ से रूम के साथ झगड़ा हुआ करता था, और बाद में इन इलाकों पे फ़ौजी छावनियाँ जो हैं वो बड़े बड़े महलों में तब्दील हो गई और बड़े बड़े शहर ये बन गए। हत्ता कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में बयान भी मौजूद है कि मेरी सबसे बड़ी सिपाह और फ़ौज वो मिस्र में है। इसलिए मिस्र हसास था कि अगर मिस्र से भी हमला हो जाता मुआविया बिन अबी सुफियान के ख़िलाफ़, और इधर से कूफा से हमला होता, तो ये दरमियान में एक सैंडविच की तरह शाम के अफराद आ जाते और फतह यकीनी थी। लिहाजा मिस्र को उन्होंने अपनी साजिशों के ज़रिए से काबू किया हुआ था शाम के बाकियों ने, और कूफा में आए रोज़ वो 4-4, 5-5 हज़ार अफराद का दस्ता बना के हमले किया करते थे। अब हम आए, मसला शुरू जो होता है वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौरे खिलाफत से होता है, कि यहाँ पे दौरे खिलाफत जो खलीफ़ा दुवुम है उसमें आप देखें कि कूफा है, मिस्र है, इनके वाली कौन थे। शाम का वाली, शाम बहुत अहम इलाका था, इस शाम के वाली कौन थे। शाम के वालियों में जो सबसे पहले वाली शाम के बने, अगर उनको हम मुलाहिज़ा करें तो शाम के वाली में इब्तिदा में आते हैं यजीद बिन अबी सुफियान, 18 हिजरी को बनाए गए, और यजीद बिन अबी सुफियान से पहले अबू उबैदा बिन जर्राह। अबू उबैदा बिन जर्राह उनकी वफ़ात 18 हिजरी को है, और वो फातहीन में से हैं कि उन्होंने ही गालिबन इन इलाकों को फतह किया। अबू उबैदा बिन जर्राह उनको जब खलीफ़ा दुवुम ने वाली बनाया शाम का, तो मसलन 12 हिजरी से लेके 18 हिजरी, ये जो दरमियान का अरसा है 12 हिजरी से 18 हिजरी के दरमियान, अगर हम ये मान लें कि 18 हिजरी के करीब करीब ही मसलन शाम फतह हुआ था, तो पहले वाली बन जाते हैं अबू उबैदा बिन जर्राह। ये हमें अदाद व शुमार इन गुफ्तगुओं को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा हमारे पास ये बात आई कि शाम के पहले वाली वो अबू उबैदा बिन जर्राह बने, लेकिन 18 हिजरी को ही उनकी वफ़ात हो गई और उनकी वफ़ात के बाद खलीफे दोवम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने यजीद बिन अबी सुफियान को शाम जैसे हसास इलाके का वाली बना दिया। अबू सुफियान के बेटे माविया का भाई यजीद बिन अबी सुफियान, लेकिन यजीद बिन अबी सुफियान भी 18वीं हिजरी में ही इंतकाल कर गए। इसके बाद खलीफे दोवम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इसी इलाके शाम में यजीद बिन अबी सुफियान के भाई माविया बिन अबी सुफियान को वाली बना दिया और माविया बिन अबी सुफियान पूरे दौरे हुकूमत खलीफे दोवम उधर के गवर्नर रहे। लिहाजा माविया 18 से 23 हिजरी तक उधर का ही गवर्नर रहा, कोई और वहाँ पर नहीं आया। अब आपने देखा शाम जैसे इलाके में इब्तदाए इस्लाम से जब से वो फ़तह हुआ है, शाम का इलाका जब से फ़तह हुआ है, उस दर फ़कत और फ़कत उन अफराद की हुकूमत रही है कि जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ग्रोह में खसूसी ग्रोह में शुमार होते थे। इसलिए अबू उबैदा बिन जर्राह के बाद यजीद बिन अबी सुफियान, यजीद बिन अबी सुफियान के बाद माविया बिन अबी सुफियान, और एक तूलानी अरसा अब माविया बिन अबी सुफियान जब 23 हिजरी को उस्मान बिन अफवान आए तो खलीफे सेवम ने भी वहाँ पे हुकूमत तब्दील नहीं की। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 18 हिजरी से लेके 35 हिजरी तक एक इलाका एक ख़ानदान के हाथों में रहे, तो किस तरह से मुमकिन है कि वहाँ से वो ख़ानदान हटने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाए। इसलिए ये एक अहम हमारे सामने अदाद व शुमार सिर्फ शाम के इलाके के अतबार से आए। हम इसके बाद आ जाते हैं कूफा। कूफा जब फतह हुआ 21 हिजरी से 23 हिजरी तक अमर बिन आस को खलीफे दुवम ने बनाया। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि ये जो हसास इलाके हैं ये बनु उमैया या बनु उमैया के साथ मुनसलिक उनके वफादार अफराद उनके हाथों में ये इलाके दर हकीकत खलीफे दुवम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में आए। लिहाजा 21 से 23 हिजरी तक अमर बिन आस वो कूफा के वाली रहे और इसी कूफा के वलात में बाद में जब खलीफे सिवम आए तो उन्होंने वहाँ पर फिर इसी तरीके से आगे अपने रिश्तेदार और अपने कराबदार उनको हुकूमत दी। कूफा को हम थोड़ा सा हसास तरीके से देखते हैं क्योंकि अबू मूसा अशअरी का ताल्लुक कूफा के आमिलीन में से था कि अगर हम कूफा के गवर्नरों को ना पढ़ें तो ये वाला मकतूब हमें समझ नहीं आएगा, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले फुर्सत में जो आके कदम उठाया वो यही कदम था कि इमाम अलैहिस्सलाम ने वाली हजरात गवर्नरों का मुहासबा शुरू कर दिया और मुहासबा करते हुए अदालत के बुनियाद बनाते हुए ना कराबतदारी को ना अजीज़दारी को ना सहाबी, हत्ता कि सहाबी मीज़ान भी नहीं रखा। जैसे बाद में आने वाले फ़िरकाजात ने सहाबियत को एक मीज़ान बना लिया, सहाबियत को भी मीज़ान नहीं बनाया, हत्ता कि अहले बैत इस माना में कि नस्ल सादात हो इसको भी मेयार नहीं बनाया। इसलिए आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो औलाद है मुख्तलिफ अदाद व शुमार हैं, 38 है, 39 है, 41 है, इतनी किसी औलाद में से आप किसी को भी वावलात में से या इन गवर्नरों में से नहीं देखेंगे। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ना अपने भाइयों के बच्चों को हुकूमत दी ना अपने बेटों को हुकूमत दी। इसलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में ना सहाबियत मेयार था ना नस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से होना मेयार था। और अगर किसी खुतबे में ये आता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते हैं तो उधर अहले बैत से मुराद फ़कत वो हस्तियाँ जिन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसा के नीचे चादर के नीचे जमा करके अहले बैत यानी अहले बैत तहारत जिनको अहले बैत का इनवान दिया फ़कत वो मुराद हैं, यानी अल्लाह ताला ने जिनको हाकिम बनाया अहले बैत कह के वो अहले बैत मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम के होते हैं। वइला आम अहले बैत जो नस्ल सादात से ताल्लुक़ रखते हैं या नस्ल जनाब सैयदा सलामुल अलैहा से ताल्लुक़ रखते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में हुकूमत उनका हक़ नहीं है, इसलिए किसी को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह हक़ नहीं लेने दिया। इसलिए ना इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में सहाबियत कोई मेयार था ना उनकी नज़र में रिश्तेदारी कराबरदारी या रसूल की नस्ल में से होना मेयार था ना इमाम अली अलैहिस्सलाम की नज़र में उस दौर में जो उनकी चापलूसी करते जो उनके करीब होते मदह सताइश करते कोई भी इनमें से मेयार नहीं था। मेयार क्या था? अदालत। अब अदल का जब आगाज़ अदालत के नफाज का शुरू किया तो सबसे पहले जिनकी पकड़ की वो हुक्मरान हैं, उनका मुहासबा हुक्मरानों का किया, हुक्मरानों से पूरा हिसाब किताब किया, नाअहल अफराद को निकाला बाहर और उनकी जगह पे नए अफराद को मौका फराहम किया, और इसी तरीके से अवामुन्नास के अंदर अदल व इंसाफ की कोशिशें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शुरू कर दी। लिहाजा अदालत पहला अम्र है जो इमाम ने आके खिलाफत में कदम रखते साथ अंजाम दिया, और ये फ़लसफ़ा उस दौर के लोगों को सही समझ ही नहीं आता था। जैसे कि इंशाल्लाह हम गुफ्तगू में देखेंगे, बड़े बड़े सहाबा हैं वो बरक्स इमाम अली अलैहिस्सलाम को मशवरे देते हैं, क्योंकि वो जो दौर देख चुके थे उस दौर में अदल व इंसाफ को मेयार बना के इलाकों की तकसीम नहीं की जाती थी। उस दौर में अदल व इंसाफ को मेयार बना के गवर्नर नहीं बनाए जाते थे, ना माल की तकसीम ना गवर्नरों की तकसीम। और एक अरसा दराज कम से कम खलीफे सेवों पे शिया सुन्नी दोनों ही कायल हैं कि हज़रत उस्मान के दौर में जो गवर्नर बनाए गए हैं वो अदल व इंसाफ के मेयार के तहत नहीं बनाए गए, और उन्हीं का दौर कम से कम 12 साल का है, और 12 साल में एक माशरा उसका उस आदात और उन औसाफ का आदी हो जाता है जो हुक्मरानों की तरफ से लागू किए जाते हैं। जैसे अभी हम पाकिस्तान की भी मिसाल देखते हैं कि वहाँ पे अगर कोई कहे कि यार यहाँ पे जामी शराइत आदिल फकीह की हुकूमत होनी चाहिए, तो दूर तो दीगर हुक्मरान तो दूर की बात, जो इस दीन मकतबे तशय्यों के कायल हैं वो भी मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को अपने जहनों वहमो गुमान में भी नहीं कभी लाए कि ये काम भी हो सकता है, क्योंकि वो अदल व इंसाफ की हुकूमत नहीं चाहते। उनकी नज़र में हुकूमत वही होती है सियासी पार्टियां बनाई जाएं और हुकूमत को हथियाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके मफाद मद्देनज़र रखते हुए आप हुकूमत को हासिल करें और उसका साथ दिया जाए जिससे मफाद मिलता है, चाहे वो मुसलमान है मुसलमान नहीं है, आदिल है आदिल नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मफाद चाहिए, इसलिए मफाद मिल जाता है उसके गुनगाते हैं। यही सूरत हाल हमें बिलखसूस खलीफ़े सेवुम के दौर में नज़र आती है। आए अभी हम देखते हैं कूफा की क्या सूरत थी। कूफा में जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में वाली बनाए गए, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के दौर में खलीफ़े दुव्वुम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने बसरा का वाली अबू मूसा अशरी उनको बना दिया। 23 हिजरी को बसरा का वाली अबू मूसा अशारी को करार दिया बसरा का वाली। अच्छा, उसके बाद जो ये कूफा का शहर था, इस कूफे के शहर में सबसे पहले जिनको हज़रत उमर ने वाली बनाया 17 हिजरी से 20 हिजरी तक, क्योंकि उनकी हुकूमत ही 13 हिजरी से 23 हिजरी थी और कूफा बाद के अय्याम में फ़तह हुआ था। लिहाजा जब फ़तह हुआ कूफा, बिल्कुल इसी तरह जैसे शाम फ़तह हुआ तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बना दिया उधर वाली और गवर्नर बनाया, लेकिन जब कूफा फ़तह हुआ तो खलीफे दुव्वुम ने वहाँ का वाली साद बिन अबी वक्कास को बना दिया, साद बिन अबी वक्कास को, और साद बिन अबी वक्कास 17 से 20 हिजरी तक साद बिन अबी वक्कास कूफा के वाली रहे। कूफा के कुछ अरसे 19 महीने, 1 साल 9 महीने जनाब मारे यासिर को भी खलीफे दुव्वुम ने वाली बनाया, फिर उन्हें अज़ल कर दिया और अज़ल करके इस हसास जगह पे मुग़ीरा बिन शोबा को बना दिया। आप तवज्जो करें क्योंकि ये जो 3 नाम मैं आपकी खिदमत में ले रहा हूँ इनके तस्करे अभी आपके सामने आते रहेंगे। कूफा एक बड़ी छुआनी थी, इधर ही फ़ौज की असल क़ुव्वत पाई जाती थी और ये सबसे बड़ा शहर आलमे इस्लाम का बन गया। कूफा से बड़ा शहर इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर तक भी कोई और शहर इतना वसी नहीं था। जो बड़े बड़े शहर या सूबे थे इमाम इन चार खुलफा के दौर में, उनमें शाम है, मिस्र है और कूफा है। इसके बाद कुछ अहमियत के हामिल भी शहर थे, जैसे उनमें से एक बसरा आ गया, लेकिन बसरा अपनी ज़मीनी खदुखाल की वजह से, जिसे कहते हैं जोग्राफियाई साख्त की वजह से हैसियत रखता था, क्योंकि बसरा से कूफा करीब हो जाता है और शाम भी उसके बाद करीब हो जाता है, इसलिए बसरा एक स्ट्रेटजिकली तौर पर एक अहम शहर शुमार होता था। लेकिन असल बड़े बड़े शहर यही मिस्र है, शाम है और कूफा थे। कूफा में खलीफे दुवम ने जिनको बनाया वो साद बिन अबी वक्कास थे। साद बिन अबी वक्कास का शुमार भी उमवी बादशाहों और उमवी खुलफा के करीबी दोस्तों और अजीज़ों में से होता है, और उसकी वजह भी यही है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने भी दोबारा उन्हें कूफा का वाली बनाया। बहरहाल आप सबसे पहले इसे याद रखें, 17 हिजरी से लेके 20 हिजरी तक, यह दादो शुमार इसलिए आपकी खिदमत में तकरारन ज़िक्र किए जा रहे हैं कि इन्हें अच्छे तरीके से हमें याद करना होगा ताकि हम उस दौर के मसाइल को समझ सकें। 17 हिजरी से 20 हिजरी तक साद बिन अबी वक्कास, उन्हें खलीफा दुवम ने गवर्नर बना दिया कूफा जैसे अहम शहर का, और उसके बाद फिर अम्मार बिन यासिर को बनाया, और अम्मार बिन यासिर जनाब अम्मार बिन यासिर वो 19 महीने रहे। फिर जनाब अम्मार बिन यासिर को अज़ल किया यानी हटा दिया, और 23 हिजरी को यानी जिस साल खलीफे दुवम को कत्ल किया गया था उसी साल खलीफे दुवम ने कूफा का वाली व गवर्नर मुगीरा बिन शुबा को बनाया। मुगीरा बिन शुबा वो शख्सियत हैं कि जिसने इमाम अली अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले गालम गलौज शुरू की, सबसे पहले गालम गलौज जिस शख्सियत ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू की वो मुगीरा बिन शुबा हैं। मुगीरा बिन शुबा के पहले जाके बैयत की इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों, ये तारीख़ तबरी उर्दू में भी मौजूद है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके इसको बिलखसूस इस हिस्से को ज़रूर पढ़ें। मुगीरा बिन शुबा क्योंकि एक बड़ा नाम है और उमवी राह हमवार करने वाले एक बुज़ुर्ग शख्सियत शुमार किए जाते हैं, मुगीरा बिन शुबा ने सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों 35 हिजरी को जाके बैयत की। बैयत करने के बाद तन्हाई में इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास ये मुगीरा बिन शुबा आया और आके ये मशवरा दिया कि अभी आप शाम के वाली माविया बिन अबी सुफियान और इसी तरीके से कूफा के वाली, मसलन उस वक्त कूफा के वाली अब्दुल्ला बिन आमिर बिन करीज़ थे, अब्दुल्ला बिन आमिर इबन आमिर, इन दोनों को ना हटाओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम को कहा कि आप इन्हें ना हटाएं, इन दोनों को अपनी जगह पर बाकी रहने दें, जब आपकी हुकूमत थोड़ी मजबूत और कवी हो जाए तो इन दोनों को आप आराम से माजूल कर देना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बात सुनी और खामोश होने के थोड़ी देर खामोश रहे, फिर वाज़े तौर पे इनकार कर दिया उनकी बात का। अच्छा, मुगीरा बिन शुबा ये कह के बाहर चले गए। अगले दिन फिर दोबारा मुगीरा बिन शुबा वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आए और ये मशवरा दिया कि मैंने जो कल मशवरा दिया था वो दुरुस्त नहीं था, ये तारीख़ तबरी में दर्ज है, आप ज़रूर उसका मुराजा करें, मैंने जो कल मशवरा दिया था आपको वो दुरुस्त नहीं था, एक लहजे के लिए भी माविया बिन अबी सुफियान और अब्दुल्ला बिन आमिर जो कूफा का वाली है उसको आप मौका फरहम ना करें और उन्हें माजूल कर दें और हटा दें। उसके बाद वो फिर मुगीरा बिन शुबा वापस चले गए। तो इतने में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो आए और इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या आपको मुगीरा ने कहा है? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बताया कल वो ये कह रहा था और आज मुगीरा ये कह रहे। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपनी राय दी कि कल वो जो कह रहा था वो सही था और आज जो कह रहा है ये धोखा है आपको, ये उसने धोखा दिया है। यहाँ पे ख़ुद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के ऊपर भी एक हर्फ आता है कि जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो उनके मुकाबले में उन्हें मशवरा दिया जा रहा है, जबकि उन्हें इत्तबा और इताअत करनी चाहिए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को। बहरहाल अभी हम इस पहलू से जायज़ा नहीं लेते, लेकिन वो यही मुगीरा बिन शुबा जिन्हें खलीफा दुवम ने कूफा जैसे अहम शहर का वाली बनाया था, और बाद में यही मुगीरा बिन शुबा हज़रत उस्मान के दौर में यानी 23 हिजरी से लेके 35 हिजरी तक मुख्तलिफ इलाकों का वाली रहा और गवर्नर रहा अब उस्मानी, क्योंकि एहसानात मुगीरा बिन शुबा पे किसके हैं? सबसे पहले तो एहसान है खलीफा दुवम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का, वो कूफा की पूरी विलायत और गवर्नरी और हुकूमत दे दी। उसके बाद दूसरा किसका एहसान है? उस्मान बिन अफ़ान का, कि मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर विलायत और गवर्नरी दी, कूफा से हटा दिया लेकिन मुख्तलिफ और दीगर इलाकों की विलायत दी। तो यहाँ पर 35 हिजरी को मुगीरा को ये यकीन था कि अब मुझे कोई हुकूमत नहीं मिलनी, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहली फुर्सत में मुगीरा को हटाया। जिन जिन इलाकों में मुगीरा की विलायत या उसके असरात थे, सब असरात को ख़त्म किया। इसलिए मुग़ीरा शदीद मुखालिफ हो गया और अहले सुन्नत मोतबर तुरुक से जो हदीसें पहुँची हैं उसके मुताबिक इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियाँ देने का सिलसिला जिस शख्सियत ने शुरू किया वह मुग़ीरा बिन शोबा ही था, और आज़ादाना गालम गलोच किया करता था इमाम अली अलैहिस्सलाम को। यह आपने देखा कि कूफा के पहले वाली हज़रत उमर के दौर में 23 हिजरी को रहे और वफात उमर तक यही मुग़ीरा बिन शोबा वाली रहा। इसके बाद आगे उस्मान का दौर, जनाब उस्मान बिन अफ़वान उन्होंने अपने दौर में अबू मूसा अशरी को बसरा का वाली 4 साल रहने दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इलाके, इन इलाके जो उस वक्त के आलम इस्लाम के अहम अहम इलाके थे, उन इलाकों के वालियों ने ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कदम उठाए, क्योंकि उनको हुकूमतों से बरतरफ़ कर दिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आके। मुग़ीरा को भी बरतरफ़ किया, उधर से मुआविया बिन अबी सुफ़यान को भी बरतरफ़ किया। इधर से बसरा का वाली उस्मान बिन अफ़वान, उन्होंने पहले बसरा का वाली अबू मूसा अशरी को बनाया और अबू मूसा अशरी को 4 साल वाली रहने दिया, यानी 23 हिजरी को जब उस्मान बिन अफ़वान उनकी हुकूमत का आगाज़ हुआ तो उस वक्त बसरा के वाली अबू मूसा अशरी थे। ये जो बसरा शहर जो स्ट्रेटजिकली तौर पे बड़ी हसासियत का उस वक्त के दौर में हसासियत रखता था, हसास इलाका था, क्योंकि दारुल खिलाफे के करीब था, शाम से उसके रवाबित बन सकते थे, तो ये जो हसास इलाका था अबू मूसा अशरी के अंडर था। अबू मूसा अशरी ने बसरा को उस्मान बिन अफ़वान ने हटाया नहीं, क्योंकि वाली हज़रत उमर के बनाए हुए थे ये। उसकी वजह ये थी कि उमर बिन ख़त्ताब ने ये वसीयत की थी उस्मान बिन अफ़वान को कि 4 साल रहने देने वाली, 4 साल अबू मूसा अशरी को बसरा का वाली आपने रहने देने। इसलिए उन्होंने 4 साल रहने दिया और 4 साल रहने के बाद उन्होंने उसे हटा के अब्दुल्ला बिन आमिर को वहाँ का वाली बना दिया। उसके बाद उस्मान बिन अफ़वान ने कूफा का वाली, कूफा की तरफ हम आ जाएं, कूफा का वाली उस्मान बिन अफ़वान ने वो मुग़ीरा को बना दिया और वहाँ से मुग़ीरा तो पहली वाली था, माजरत के खलीफा दुव्वम की वफ़ात तक कूफा का वाली कौन था? मुग़ीरा बिन शोबा। लेकिन जब खिलाफत उस्मान आई तो उन्होंने मुग़ीरा बिन शोबा को हटाया और साद बिन अबी वक़ास को ले आए, लिहाजा साद बिन अबी वक़ास को वाली बना दिया। और साद बिन अबी वक़ास को वाली बनाने की भी असल वजह खलीफ़े दुव्वम हज़रत उमर की वसीयत थी। ये अहले सुन्नत कुतुब में लिखे, कोई शिया कुतुब में ये आदादोशुमार वारिद नहीं हुए। यानी हज़रत उस्मान ने 2 जगहों पे हज़रत उमर की वसीयत पर अमल करते हुए वालियों को बरकरार रखा, बसरा में अबू मूसा अशरी को और कूफा में मुग़ीरा बिन शोबा को हटा के साद बिन अबी वक़ास को लेके आए, और ये वसीयत थी। साद बिन अबी वक़ास 24-25 हिजरी तक, यानी 2-3 साल वाली रहे और फिर वहाँ से उन्होंने उनको बाद में हटाया गया और मुख्तलिफ वाली रहे, हत्ता कि जब हज़रत उस्मान के ऊपर हमला किया गया तो कूफा के लोगों ने मुतालबा किया कि हमारा वाली अबू मूसा अशरी को बना दिया जाए। आप लहजा करें, 35 हिजरी को फिर हज़रत उस्मान ने मजबूर हो के बसरा से हटा के, बसरा से तो 4 साल बाद हटा दिया था, फिर कूफा का वाली अबू मूसा अशरी को बना दिया। अभी आप नाम देख रहे हैं, मुग़ीरा बिन शोबा, साद बिन अबी वक़ास, अमर बिन आस, अबू मूसा अशरी, ये सब के सब इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुखालिफ गिरोह निकले, सब के सब। मिस्र के जितने वाली थे वो सब के सब, इसी तरह कूफा के वाली वो भी। इसलिए मुमकिन है कि नामों में कोई रद्दबदल हो जाए, लेकिन ये जो आपके पास अदादोशुमार आ रहे हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम अब इधर खिलाफत में आए और इमाम अली अलैहिस्सलाम जब 35 हिजरी को उन्होंने खिलाफत संभाली तो उस वक्त कूफा का वाली कौन है? अबू मूसा अशरी। अबू मूसा अशरी को क्यों बनाया गया है? क्योंकि हज़रत उस्मान से कूफा वालों ने शदीद मुतालबा किया और उनके ऊपर चढ़ाई की हुई थी, तो हज़रत उस्मान को बाज़ तो मुतालबात मानने पड़े, उन मुतालबात में से एक मुतालबा कूफा वालों का भी उन्होंने कबूल किया और अबू मूसा अशरी को वहाँ का वाली उन्होंने बना दिया। इसी तरीके से हमारे पास दीगर अदाद शुमार आते हैं कि बसरा है, बसरा के वाली भी इसी तरीके से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हटाए। बस अब कूफा का वाली कौन है? अबू मूसा अशरी। लेकिन किसने बनाया है? उस्मान बिन अफ़वान ने। ये बार बार मैं इसलिए तकरार कर रहा हूँ कि ये ख़त इसी से मरबूत है। इसलिए आज हम ये देखेंगे कि अब वालियों को जब हटाया और अदालत को नाफिज किया गवर्नरों के ऊपर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने, तब क्या मुश्किलात इमाम अली अलैहिस्सलाम को पेश आईं। कूफा जैसा अहम शहर वो है अबू मूसा अशरी के। इमाम अली अलैहिस्सलाम उस वक्त कहाँ थे? 35 हिजरी को मदीना में। मदीना से जो कूफा का अभी भी आप ये नक्शे में देख सकते हैं, गूगल में देख सकते हैं कि कितना फासला है, तकरीबन 1000 से ऊपर किलोमीटर यकीनी है। यकीनी तौर पे 1000 किलोमीटर दूर है कूफा। और कूफा उस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी छुआनी और सबसे बड़ा शहर था जहाँ पे कुव्वत पाई जाती थी। और इस अहम शहर का जो वाली है वो अबू मूसा अशारी है। कूफा के बाद जो शहर आता था वो शाम है, और शाम का जो वाली है वो मुआविया इब्न अबी सुफियान है। बसरा का जो वाली है वो अब्दुल्ला बिन आमिर बिन करीज़ है। मैंने पीछे गुफ्तगू में अब्दुल्ला बिन आमिर को कूफा का वाली बयान किया, वो बसरा के वाली थे। बस आप देख रहे हैं कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत मिली है, तो जब हुकूमत मिली तो कूफा का वाली कौन है? अबू मूसा अशरी, ये हज़रत उस्मान ने बनाए हैं। शाम का वाली कौन है? शाम का गवर्नर कौन है? मुआविया इब्न अबी सुफियान। ये किसने बनाया है? ये खलीफा दुव्वम ने बनाया था, और मुसलसल हज़रत उस्मान के 12 साल हुकूमत में वो उधर के गवर्नर और वाली रहे। उसके बाद बसरा में आ जाएँ, उस्मान हज़रत उस्मान के हैं। मिस्र में आ जाएँ, हज़रत उस्मान के हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये उस्मानी गवर्नर सबको हटा दिया सवाए अबू मूसा अशरी के। तवज्जो कर रहे हैं, जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम को खिलाफत मिली, इमाम ने मिस्र से भी हटा दिया और शाम से भी हटा दिया। बसरा में उस्मान बिन हुनैफ का भेजा, और शाम के लिए भी उन्होंने पहले अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहा। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने माजरत कर ली कि वहाँ पे तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। तारीख़ तबरी में वाज़ तौर पे लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहा कि आप जाएँ शाम और उधर विलायत संभाले, कहा कि वो लोग तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, कत्ल करेंगे, और माजरत खाई कर ली। इसी तरह मिस्र का वाली उन्हें बनाया, क्योंकि मिस्र आता है कूफा शाम को पार करके मिस्र आता है। अगर आप अभी भी नक्शे के अंदर देखें, खुश्की का जो सफ़र है उसके तहत शाम के इलाके के बाद मिस्र आता है, और मिस्र वो जगह थी जहाँ पे सबसे बड़ी फ़ौज मौजूद थी आलमी इस्लाम की। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बंदों में सबसे ज़्यादा ज़ीरक और सबसे ज़्यादा शुजा और दीनदार उसको मिस्र का वाली बनाया, और वो मोहम्मद इब्न अबी बकर और जनाब मालिक अश्तर हैं। आए अब हम कूफा के हवाले से देखें, क्योंकि हमें ये बात पता लग गई, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आते साथ गवर्नरों उस्मानी गवर्नरों को माजूल कर दिया, लेकिन कूफा के वाली अबू मूसा अशरी उन्हें माजूल नहीं किया। तेजी के साथ अबू मूसा अशरी का हम एक जायज़ा लेते हैं। गुज़िश्ता अगर हुकूमतों में देखें तो अबू मूसा अशरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यमन साइड पे बाज़ जगहों पे वो हुकूमत या बाज़ हकूमती ओहदों के ऊपर फायज रहे हैं, और खलीफे दुव्वम के दौर में बिलखसूस खलीफे दुव्वम ने उनको खिला लेके आए, और उन्होंने उनको बसरा में हुकूमत दी। पहली शख्सियत अबू मूसा अशरी को जो गवर्नरी दी, सियासत के मैदान में लाने वाली शख्सियत, और सियासत में लाने के बाद एक बड़े इलाके की विलायत और हुक्मरानी और गवर्नरी देने वाली शख्सियत वो खलीफा दुव्वम है, और वह है बसरा। और बसरा में वो मुसलसल रहे, यहाँ तक के खलीफा दुव्वम कत्ल कर दिए गए, वो और वो उसी तरीके से बरकरार रहे। और अबू मूसा अशरी के इसी दौर में इस्फहान है, कुम है, अहवाज़ है, जो अभी ईरान के बड़े बड़े इलाके हैं, ये सारे फतह हो गए। ये सारे फतह भी अबू मूसा अशरी के उसी दौर में हुए हैं जब वो बसरा कीपर थे। अभी आप ईरान का नक्शा देखें तो ईरान के बॉर्डर के साथ बिल्कुल साथ ही तकरीबन बसरा है। तो बसरा से फिर ये बसरा के साथ बिल्कुल अहवाज़ है जो मौजूदा, अभी ये जो अरबाइन के लिए जाते हैं वो बसरा के करीब से ही जाते हैं। तो बसरा के बिल्कुल साथ अहवाज शहर है या खुजिस्तान है, उसके बाद फिर ये इस कुम और इस्फहान के इलाके आ जाते हैं। इस्फहान तक पूरा एरिया वो फतह हो गया अबू मूसा अशरी खलीफे दुव्वुम के दौर तक ही। खलीफे दुव्वुम के बाद बसरा से हटा के कूफा का वाली हज़रत उस्मान ने बना दिया। लिहाजा जनाब अबू मूसा अशरी उनकी सब हमदर्दियाँ या खलीफे दुव्वुम हज़रत उमर के साथ थी या हज़रत उस्मान के साथ थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ पहले से ही कोई ख़ास ऐसा ताल्लुक़ और रब्त उनका कवी तौर पे मौजूद नहीं था। ये तो हुकूमत की जहत से है। आए हम उनकी अपनी चंद ज़ाती ज़िंदगी के बारे में चंद सतरें देख लें। सीरुल आलाम नुबला शमसुद्दीन राहबी उनकी किताब से नकल किया जा रहा है, ये जो आपकी खिदमत में अभी बयान है, और तारीख़ुल इस्लाम ज़ाहबी की है उससे नकल किया गया, और इस्तियाब मारूफ किताब है फ़ी मारफत सहाबा के ऊपर उससे ये नकल किया जा रहा है। अहले सुन्नत की ये बड़ी किताबें हैं। अबू मूसा अशरी का नाम था अब्दुल्ला बिन कैस बिन सलीम बिन हद्दार, यमन से इनका ताल्लुक़ था, अशअरी कबीले से ताल्लुक़ था। अशअरी कबीले की अक्सरियत अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद में मुहिब निकले, इब्तदा में नहीं थे, लेकिन बाद में अशअरी कबीले की बहुत बड़ी शख्सियत जो बाद के अय्याम में इमाम बाकर व इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में इसी यमन से उठ के, यमन में अशअरी कबीला पाया जाता था जो मौजूदा यमन जहाँ पे अभी आले सऊद ने ज़ालिमाना हमलों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इधर अशअरी कबीला बहुत मारूफ और बड़ा कबीला था, और कुम में इन्हीं अशअरी कबीलों की वजह से तशय्यु फैली। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अबू मूसा अशरी के नाम से ये शख्सियत, यानी मक्का हिजरत से 21 साल पहले, 21 साल पहले अबू मूसा अशरी की विलादत यमन में हुई, और तकरीबन 41 या 42 हिजरी यानी इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की हुकूमत में इंतकाल अबू मूसा अशरी का। अबू मूसा अशरी की विलादत का यमन से ताल्लुक़ है, अशरी कबीले से ताल्लुक़ है, और हिजरत से यानी हिजरत 1 हिजरी से 21 साल पहले विलादत हुई, और कहा जाता है 7 या 8 हिजरी से पहले जो 7वां या 8वां साल है तब वो इस्लाम लेके आए, यानी बाल्फाज़े दीगर हिजरत से 2-3 साल पहले उनके आलम इस्लाम में आने के बारे में कहा जाता है। इस वजह से उन्होंने हबशा हिजरत भी की, यानी उनकी पूरी हालात ज़िंदगी में चंद हमारे पास बुनियादी नुकात हैं जो उनकी हालात ज़िंदगी अहले सुन्नत ने नकल की है, क्योंकि मकतबे तशय्यों में जो नकल हुई है उनकी शख्सियत उसमें तो बड़ी सख्त तनकीद और बड़े सख्त अल्फाज वारिद हुए हैं। खिसाल शेख सदूक में बहुत शदीद अल्फाज वारिद हुए हैं, और इसी तरह दीगर कुतुब में अबू मूसा अशरी के बारे में शदीद अल्फाज वारिद हुए हैं। हम अभी उस तरफ नहीं जाते, हम अहले सुन्नत कुतुब की तरफ आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सहाबियत के इनवान से वो ख़ुसूसी अहतमाम करते हैं और फ़ज़ाइल ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि बुनियादी नुकात क्या थे अबू मूसा अशरी की शख्सियत में। एक तो ये थे कि हिजरत से पहले इस्लाम लाए, नंबर दो हबशा में उन्होंने हिजरत की, नंबर तीन खैबर की जंग ख़त्म हो गई थी उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। बाज़ कुतुब में लिखा है कि नहीं खैबर के गज़बे में शामिल थे और रसूलुल्लाह ने हिस्सा भी दिया, लेकिन अक्सर इस पर मुत्तफिक हैं कि खैबर की जंग ख़त्म हो गई थी 7 हिजरी को वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा वापस। ये तो उनका 7 हिजरी से पहले के वाक़यात हैं कि वो इस इस्लाम लेके आए थे हिजरत से पहले ही, और हबशा उन्होंने जनाब जाफर तैयार के साथ हिजरत की। आवाज़ इनकी बहुत अच्छी थी। अबू मूसा अशरी की जो ज़्यादा खूबियाँ तकरार के साथ वारिद हुई हैं वह हैं हुस्न सौत, किरात बहुत अच्छी कुरान करीम की करते थे, यहाँ तक कि सही सनद रवायात अहले सुन्नत में आई हैं कि रात को अबू मूसा अशरी कुरान पढ़ा करते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात वो कान लगा के सुना करती थीं। और ये भी वारिद हुआ है कि हज़रत उमर जब अपनी खिलाफत के दौर में, हज़रत उमर इन्हें हमेशा अपने पास बिठाते थे, यानी खिलाफत के दौर में हज़रत उमर ने इन्हें अपने करीबियों में शामिल किया हुआ था, और जब थक हार जाते तो इनसे किरात करवाते थे और इनकी अच्छी आवाज़ से वो महजूज हुआ करते थे। अच्छा, ये इनकी हुस्न सौत के बाद अगली खसूसियत जो वारिद हुई है वो ये है कि अहले इल्म और फतवा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने पूरा कुरान व किरात किया, यानी कुरान उनके सामने रसूलुल्लाह के सामने पढ़ा था कुरान, और अहले इल्म शुमार हुआ करते थे। इनका अपना जो हुलिया मुबारक वारिद हुआ है, हुलिये में ये वारिद हुआ है कि नहीफ सा कमज़ोर सा बदन था, कद उनका छोटा था और दाढ़ी बड़ी हल्की सी थी। अबू मूसा अशअरी की दाढ़ी बड़ी हल्की थी, छोटा कद था और कमज़ोर बदन था, और इबादत जोहद और तकवा में ज़्यादा रहा करते थे और इल्म की उनकी शोहरत थी। इसलिए फतवा के हवाले से अहले सुन्नत में ये बात मारूफ है जो उनके मुहद्दसीन ने लिखी है, कुदातुल उम्मा, उम्मत के चार हैं काजी। पहले हैं खलीफा दुवम हज़रत उमर, दूसरे हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम, तीसरे हैं ज़ैद और चौथे अबू मूसा। अबू मूसा अशअरी का काजियों में बड़ा नाम हुआ करता था। अच्छा, इनका शुरू से ही हज़रत उमर से चूँकि ताल्लुक़ था, जैसा हज़रत उमर ने इन्हें फिर बसरा की विलायत दे दी। इनसे अहले सुन्नत ने बहुत सारी रवायतें नकल की हैं, तकरीबन अगर सब रवायतों को जोड़ा जाए तो वो मुमकिन है कि 400-500 से ऊपर तजावुज़ कर जाएँ। सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में 49 हदीसें इनसे आई हैं। ये कुल उनका बैकग्राउंड था। आए अब हम अबू मूसा अशअरी के, इमाम अली अलैहिस्सलाम की जब खिलाफत उन्हें मिली और इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों पे बैयत हुई तो चंद दिनों के बाद ही, यानी मदीना मुनव्वरा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, उनके हाथों में बैयत के सिलसिले जारी हैं, अक्सर उम्मत और सहाबा किराम ने उनके हाथों पे बैयत कर ली, इसी असना में खामोशी के साथ हज़रत आयशा वो बसरा चली जाती हैं। उस वक्त कूफा जो है वो अबू मूसा अशअरी वो हैं आमिल और हज़रत उस्मान के बनाए हुए हैं। अभी इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये फुर्सत नहीं मिली कि कूफा में किसी आमिल अपने वाली या अपने गवर्नर को वो मुअय्यन करें। हज़रत आयशा पहुंच जाती हैं बसरा में। अब जब ये बसरा पहुंचती हैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंग जमल ख़त्म करने के लिए पहले काविशें कं, कोई वहाँ पर जवाब ना बना तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को मजबूरन जंग लड़ने के लिए बसरा जाना पड़ा, क्योंकि बसरा को उन्होंने गढ़ बना लिया और बसरा से कूफा पे आराम से कब्ज़ा किया जा सकता था। और हज़रत आयशा और ये जो हज़रत उस्मान हज़रत उमर, ये एक ही ग्रोह शुमार होता था, इसलिए जनाब अबू मूसा अशअरी की सारी हमदर्दियाँ वो हज़रत आयशा के साथ थीं। गोया के अलग सलैक और पीछे पूरा एक प्लान और मंसूबा मौजूद है और उस मंसूबे के तहत शाम से मुआविया इब्न अबी सुफयान ने हटना नहीं है और कूफा जो है वह अबू मूसा अशअरी के पास ही रहना है, और ये जो बसरा है उधर जनाब आयशा ने जाके कब्ज़ा किया। उस्मान बिन हुनैफ उनको पकड़ लिया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के वाली थे, गवर्नर थे, और उनको जब हज़रत आयशा के पास लाया गया तो तारीख़ तबरी में लिखा है कि हज़रत आयशा ने कहा कि इसे पकड़ के कत्ल कर दो। तो हज़रत आयशा, यानी एक बड़ा सख्त हुक्म है कत्ल कर देना, और एक खातून जो कि तबीयतन नरम दिल होती है और इन चीज़ों से बेजार भी होती है और उसका दिल इतना सख्त नहीं होता कि किसी के कत्ल का हुक्म दे दे, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने सहाबी रसूल उस्मान बिन हुनैफ उनके फ़ौरन कत्ल का हुक्म दिया। अब वो आगे कत्ल करने के लिए बढ़े तो वहाँ पर चंद खवातीन आई और उन्होंने कहा ये सहाबी रसूल हैं, तो तब हज़रत आयशा ने कहा कि इन्हें तर्क कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए उस्मान बिन हुनैफ, इन्हें सिर्फ ज़दोकोब किया जाए। तो उन्हें इतना मारा कि लहू लहान हो गए और उनकी पूरी दाढ़ी खींच के उन्होंने उनके चेहरे मुबारक से जुदा कर दी, एक एक जर्रे को दाढ़ी के खींच के उन्होंने जुदा किया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत दी उस्मान इब्न हुनैफ को। इस तरह ये बसरा हज़रत आयशा के हाथ में आया। इमाम अली अलैहिस्सलाम बसरा की तरफ तशरीफ़ ले गए। अब जब बसरा पहुँचे हैं तो देखें मदीना मुनव्वरा से, मदीने से कम 1000, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इहतमाल ये है कि 1500 या 1800 किलोमीटर बनते हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर दूर है और 1000 किलोमीटर उस दौर में ऊँटों और घोड़ों के ज़रिए से 4 दिन में तो कोई नहीं पहुँच सकता, कई दिन लगते थे उधर। इमाम अली अलैहिस्सलाम बसरा पहुंच गए हैं। बसरा पहुंच के अब आप ख़ुद सोचें, बसरा आप नक्शे पे जा के देखें इत्मीनान से, बसरा और कूफा का आप मुकायसा करें। इमाम अली अलैहिस्सलाम को शाम से तो फौज नहीं आ सकती उनकी, अब बसरा पहुंच गए इमाम अली अलैहिस्सलाम, जंग के लिए आमादा हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को अब कुमक चाहिए, बंदे चाहिए। अगर वो शाम की तरफ जाएँ, शाम से तो नहीं आ सकती, मिस्र की बात करें तो मिस्र में मसाइल इतने खड़े हुए हैं कि शाम वाले उधर आने नहीं देंगे सिपाह। पीछे अगर देखें जो बड़े शहर हैं वो मक्का और मदीना और बहरीन और यमन हैं। यमन तो बिल्कुल बहुत ही दूर हो जाता है, वो 2-3 हज़ार किलोमीटर बन जाते हैं। लिहाजा एक जगह थी इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास जहाँ से इमाम अलैहिस्सलाम के पास फ़ौज आ सकती थी, और वह है कूफा। ये मैं दोबारा तकरार करूँ क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है हमारे इस तजिया तहलील से। क्योंकि ख़त के अल्फाज डायरेक्ट सुने तो बाज़ुकात इंसान कहता है कि ये तो बड़े सख्त अल्फाज इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कह दिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा बसरा तशरीफ़ ले गईं, वहाँ के वो सहाबी रसूल उस्मान इब्ने हुनैफ़ को पहले कत्ल का हुक्म दिया, फिर मारा पीटा खूब और दाढ़ी उनकी खींच ली। अच्छा, दूसरी तरफ बसरा से आगे है शाम। शाम में मुआविया इब्ने सुफियान बागी बन के वहाँ पर बैठे हुए हैं। मिस्र से कोई कुमक नहीं आ सकती। 150 किलोमीटर या 1000 से ऊपर किलोमीटर तय करके इमाम अली अलैहिस्सलाम बसरा पहुँचे हैं। आज आके बसरा के साथ सिर्फ एक इलाका है, वह है कूफा, और कूफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज मौजूद है। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा में भेजे अफराद भेजे, और वो अफराद कौन भेजे? इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को भेजा, जनाब अम्मार यासिर को भेजा, और वो हाजिर हुए अबू मूसा अशरी के पास। मैं तेज़ी से आपके सामने ये तबरीही के वाक़यात पढ़ दूँ कि मोहम्मद इब्न अबी बकर हैं और इस तरह से दीगर अफराद को भेजा, और ये लोग अफराद आए और इन्होंने मसा मोहम्मद इब्न अबी बकर हैं, मोहम्मद इब्न औफ हैं, मोहम्मद बिन जाफ़र हैं, या दीगर चंद अफराद और भी। तो वो अबू मूसा अशरी के पास आए और कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा है कि फ़ौज जल्द भेजें, बसरा में जंग है, आप वाली और गवर्नर हैं, फ़ौज भेजें। तो ये जब कहा तो लोग जा अन्नास इला अबी मूसा। अब उधर के गवर्नर लोग तो इस झगड़े को ही सुन रहे हैं कि खलीफा सिवम कत्ल कर दिए गए हैं और उम्मुल मोमिनीन निकल आई हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग के लिए चले गए हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रही अब हम करें क्या, क्योंकि अभी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अमलन वहाँ पर अपनी हुकूमत ही नहीं कायम की कूफा में। लिहाजा वो सारे के सारे लोग आए अबू मूसा अशरी के पास, यस्तशीरूनहू फिल खुरूज, और उनसे मशवरा लिया कि हम निकलें या ना निकलें। फ़काल अबू मूसा अम्मा सबीलुल आखिरा फअन तुकीमू, अगर तुम आखरत चाहते हो तो कूफा में बैठे रहो, व अम्मा सबीलुल दुनिया फअन तखरजू, और अगर तुम दुनिया चाहते हो तो जाओ, फिर ठीक है निकल जाओ, जाके जंग करो। व अंतुम आलम, मेरी नस्बत तुम लोग ज़्यादा बेहतर जानते हो। ये बात पहुंच गई मोहम्मद इब्ने अबी बकर, मोहम्मद बिन औफ। मोहम्मद इब्ने अबी बकर वो सैफ़ अली इब्ने मुर्तज़ा हैं, सैफ़ हैदर हैं, उस वक्त की तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम की मालिक और मोहम्मद इब्ने अबी बकर थे। मोहम्मद इब्ने अबी बकर को जब ये बात पहुंची तो वो तो गुस्से के आलम में अबू मूसा अशरी के पास आए, फ़अग़लज़ लहू, और टूट पड़े शदीद, यानी खूब उनको जितनी सुना सकते थे सुनाई, और कहा अम्मा वल्लाहि इन्ना बैत उस्मान फ़ी उनुकी। अबू मूसा शरी ने कहा कसम बखुदा उस्मान की बैत मेरे गर्दन पे अभी भी है। व उनके साहिब कुमल्लज़ी अरसला कुमा, और जिस बंदे ने तुम दोनों को मेरे पास भेजा उसकी गर्दन में भी उस्मान की बैत अभी मौजूद है। व इन अरदना अन नुकातिल माहू ला नुकातिल हत्ता ला यबका अहदुन मिन क़त्लत उस्मान इल्ला क़त्ल, कि अगर हम ये चाहें कि इसके साथ यानी अली इब्ने अबी तालिब के साथ हम जंग लड़ें तो हम कभी जंग नहीं लड़ेंगे। अगर अली ये चाहते हैं कि हम बसरा आएँ और जंग लड़ें उनके साथ तो हम कभी जंग नहीं लड़ेंगे। उस वक्त तक जंग नहीं लड़ेंगे जब तक कातिलीने उस्मान में से हर कोई गिरफ़्तार होके मारा ना जाए और कत्ल ना कर दिया जाए। अब आपने मुलाहिज़ा किया कि जब ये बात थी तो ये दोनों मोहम्मद इब्ने अबी बकर और मोहम्मद इब्ने औफ और इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आ गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ज़ी वक़ार जगह पर थे, ये अभी भी इराक़ में जगह मौजूद है, ज़ी वक़ार के मकाम में थे, और उन्हें खबर दी। इमाम ने जनाब मालिक केसर और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाया और इन दो को भेजा फिर, और कहा अबू मूसा अशरी के पास इन दोनों को भेजा, और ये दोनों फिर गए और फिर अबू मूसा अशरी से बातचीत की और कहा कि लोगों को तैयार करो कि हमारी मदद करें, हमारी मदद करने के लिए गुंजाइश नहीं है। उसके बाद फिर एक तवील खुतबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लेकिन अबू मूसा अशरी को बार बार कहते रहे, पहले अभी मोहम्मद इब्ने अबी बकर को भेजा, फिर मालिक अश्तर को भेजा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भेजा, अबू मूसा अशरी हिले ना। अब आएँ देखें, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आखिर में मकतूब लिखा, और ये मकतूब नंबर 63 है। इस मकतूब का मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूँ, बकिया इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में आपकी खिदमत में बयान किया जाएगा। امام فرماتے ہیں، میں تیزی سے صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی ابھی ترک کی جاتی ہے، کہ خدا کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ کے نام، مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے، یہ خط تھا امام علی علیہ السلام کا، کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی ہو سکتی ہے. جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو، یعنی اٹھ کھڑے ہو، کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر آ جاؤ. یہ جو تم چوہے کی طرح دبک کے بل کے اندر گھسے ہوئے ہو، اپنے بل سے باہر آ جاؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے ہو، اور اگر تم نے یہ بودا پن ہی دکھانا ہے تو ہماری نظر سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، دور نکل جاؤ. خدا کی قسم تم کھیر گھار کر لائے جاؤ گے، خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے. یعنی اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو تمہیں یہ حکومت نہیں ملے گی، تب بھی تم ذلیل و خوار ہو کے پکڑے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم اپنی دو عملی کی وجہ سے بھکلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تارپ اور بکھر کے رہ جائے گے. جو تم حکومت میں بیٹھے ہوئے اور بڑے ڈیل ڈول کے ساتھ عزت شہرت بنا کے بیٹھے ہوئے، سب بکھر جائے گی، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور سامنے سے بھی اس طرح ڈرو گے جیسے پیچھے سے ڈرتے ہو. خوف کا عالم تمہارے اوپر ایسے ہوگا جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے، لوگوں کو نہیں بھیجو گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے. یعنی یہ جو تم چال چل رہے اور اندر ہی اندر ادھر ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے تم انجام دے رہے ہو اور قاتلین عثمان کا فتنہ اٹھا رہے ہو، کہ اونٹ بہرحال اس اونٹ پہ جس کی اونٹ پہ تمہیں بہرحال سوار ہونا ہی پڑے گا، یعنی مصیبت آئے گی اور یہ مصیبت ایک اونٹ ہے، یعنی اور اس اونٹ کے اوپر تمہیں سوار ہونا پڑے گا اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا، پہاڑ کو سر کیا جائے گا. لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پہ قابو کرو اور اپنا حظ و نصیب لینے کی کوشش کرو، یعنی عمل کی دنیا میں آؤ اور جتنا اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفع ہو جاؤ، جہاں نہ تمہارے لیے اوبھگت ہے نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت. اب یہی مناسب ہے تمہیں بے ضرورت سمجھ کے نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں پہ. خدا کی قسم یہ حق پرستوں کا صحیح اقدام ہے اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پرواہ نہیں. والسلام. کہا کہ ہمیں ان بے دینوں کی، تم جیسے بے دینوں کی کوئی پرواہ نہیں. یہ کہہ کہ امام علی علیہ السلام نے مکتوب لکھا اور اس کے بعد عزل کر دیا، اور ان کی جگہ ایک نئے والی کو امام علی علیہ السلام نے بنایا، اور ان کی جگہ قرضہ بن کعب الانصاری، ان کا امام علی علیہ السلام نے وہاں کا والی بنا دیا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.